भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमि हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस 2012 नव वर्ष के हमारे सर्वप्रथम श्री श्री राधा मदन गोपाल जी इनके पुष्प अभिषेक महामहोत्सव में। सबसे पहले तो जिन भक्तों ने इस महोत्सव को इस हद तक सफल बनाया है उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हमारे सारे भक्त यहाँ के और दूर दूर से जो आए हुए, विशेष रूप से जो आज तकरीबन 800 से 1000 किलो तक जो फूल की पंखुड़ियाँ चुने हैं, वो जो किचन में सहायता किए हैं और जो भगवान श्री राधा मदन गोपाल जी इनके लिए जो ये फ्लावर ड्रेस बनाई हैं, इन सभी भक्तों को, प्रभु जी और माता जी, इन सब को हम सब मिलकर अपने अंतकरण से धन्यवाद देना चाहेंगे। 3 बार जोर से हरी बोल। क्योंकि ये पुष्प अभिषेक पता नहीं एक ऐसा रहस्यमय महोत्सव है कि जहाँ पर हमारी कम से कम पब्लिसिटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भक्त आते हैं। तो ये एक नमूना है कि पुष्पाभिषेक ये ऐसा महोत्सव है जहाँ पर हम न्योता नहीं देते। ये साक्षात श्री राधा मदन गोपाल जी जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने और उपस्थित होने वाले हैं, उन सब के परमात्मा को SMS करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो SMS का ग्रुप है वो इतना बड़ा है। तो बहुत ही वहाँ से स्पेशल SMS जाता होगा आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को कि इतनी संख्या में प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष आप लोग उपस्थित हो जाते हैं। और ये तो आज इस वर्ष और श्री राधा मदन गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ये सबसे पहला पुष्प अभिषेक महोत्सव है। हालांकि भगवान के जितने हम उत्सव मनाते हैं उन सभी उत्सवों में एक विशेष रस होता है, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, गोवर्धन पूजा हो, दामोदर लीला, जन्माष्टमी, राधाष्टमी या जो आज का पुष्प अभिषेक, एक स्पेशल फ्लेवर होता है। हालांकि हम एकत्रित होकर करते वही हैं, क्या करते हैं, श्रवण और कीर्तन। लेकिन उस श्रवण और कीर्तन को भी श्रील प्रभुपाद ने इतना ज्यादा रुचिकर बनाया है, जैसे कि लोग 31st मनाते हैं ना हर वर्ष, तो करते वही हैं, नाचना गाना। पिछले साल जो किया वो अगले साल भी वही करते हैं, 2012 में भी वही होने वाला है। लेकिन उसमें उसे और कैसे रुचिकर और एक्साइटिंग, वैरायटीफुल कैसे बनाएं, ये हर समय उनका दिमाग चलता रहता है। तो ये सभों में ये स्रोत कौन है इनका? ये आध्यात्मिक संसार में जो ऐसे उत्सव आप लोग जो पहली दफा आज यहाँ पर आए होंगे, जो आए हैं, जिनको पता नहीं कि इस प्रवचन के पश्चात क्या होने वाला है, यहाँ पर ऑल्टर में, खाली ऑल्टर में ही होने वाला है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई अन्य किसी हमारे सत्संग कार्यक्रम के समान है जहाँ पर बैठना है, श्रवण करना है, फिर कुछ कीर्तन होगा और फिर बाहर जाकर हमें प्रसाद खाना है। आज यहाँ पर फीस्ट फॉर द ईयर्स कीर्तन के द्वारा, फीस्ट फॉर द आईज वो होने वाला है, और अगर जो कोई पहली बार आए हैं नहीं जानते तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताने लायक नहीं है, वो देखने लायक है। उसे हम अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या होने जाने वाला है। और जिन्होंने देखा है, कितने वर्षों से हम कितने पुष्प अभिषेक देखे हैं, लेकिन जो देखे हैं हमारे पुराने भक्त, उनके लिए भी हर समय ये एक नयापन उत्पन्न कर कर लाता है कि नहीं? हाँ, तो अब पुष्प अभिषेक, भगवान को पुष्पों से उनका अभिषेक किया जाएगा। हालांकि भगवान का अभिषेक अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से होता है, लेकिन ये जो पुष्पों के द्वारा अभिषेक, ये श्रीमद् भागवत में भी इसकी व्याख्या की गई है कि वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की विजय प्राप्त करते, कोई असुर वध किया, तो सारे जो देवता, हालांकि ब्रजवासी गण, वो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे पराक्रम को देखकर इतना प्रभावित नहीं होते जितना देवतागण होते, क्योंकि ब्रजवासी गण भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके अंदर वो भगवान का ऐश्वर्य, जो उनका पराक्रमी ऐश्वर्य है, वो इतना दिखता नहीं। तो जैसे भगवान ने जब अघासुर का वध किया, अब अघासुर ये एक ऐसा असुर था जिससे देवता थरथर कांपते थे, एक विशाल विकराल सर्प के रूप में ये असुर, और ये जब वृंदावन पहुंचा कंस द्वारा प्रेरित, तो ये अपना जबड़ा खोले हुए, और इसका कार्यक्रम, इसकी योजना ये थी कि सारे ग्वाल बाल और साक्षात भगवान कृष्ण को ये निगल कर पचा लेगा, खत्म कर देगा। तो अब सारे देवतागण जो आशा बांधे थे भगवान श्री कृष्ण पर, क्योंकि उनके साम्राज्य में भी इस अघासुर ने दहशत फैलाई हुई थी, देवतागण उनके साम्राज्य में अघासुर ने दहशत फैलाई थी। तो ये लीला तो हम बहुत बार सुने भी हैं, जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो सारे देवतागण उस समय, जैसे कि एक स्टेडियम में मैच चल रहा होता है तो कैसे सब चारों ओर स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं, तो वैसे देवतागण बादलों के पीछे छिपे ये अघासुर वध को देख रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बादलों के पीछे क्यों छिपे थे देवतागण, कि छिप के देख रहे थे, क्योंकि भगवान तो छोटे नन्हे से थे उस समय भी, तो उन्हें थोड़ी सी शंका थी, संशय था कि यदि ये ग्वाल बाल कृष्ण, ये ग्वाला यदि अघासुर को नहीं मार सकेगा बाय चांस, क्योंकि वो साइज देख रहे थे ना, ये अघासुर जो इतना 12 मील लंबा और इसका जबड़ा इतना बड़ा कि जो ऊपर वाला भाग है इसके जबड़े का वो बादलों में जा रहा था, मतलब ये देवतागण बादलों से ऊपर से देख रहे थे वो जबड़ा उसका, तो अपर जॉ उसका इतना बड़ा था, सोचिए, और उसके अंदर उस अघासुर के मुख में जो उसकी जिह्वा थी वो मानो एक कोई अपना पूना बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, ऐसा इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जैसे, उसके जो नोकीले दांत वो जैसे कोई पर्वत के शिखर हो, सोचिए ऐसा भयावह विकराल रूप इस अघासुर का, और इसके सामने इतने से भगवान। तो हालांकि उनको विश्वास था कि ये भगवान हैं, लेकिन साइज को देखते हुए मन में थोड़ी आशंका हो रही थी, तो इसलिए वो थोड़े घबराए हुए थे कि कोई 1% चांस यदि ऐसा हो गया कि भगवान अघासुर को नहीं मार पाए, अघासुर विजय प्राप्त कर ले भगवान पर, और अघासुर ने यदि हमें देख लिया कि ये लोग सब बूस्टिंग करने के लिए, किसको, मेरे शत्रु को बूस्टिंग करने के लिए खड़े वहां पर, तो ये अघासुर तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा फिर बाद में, तो इसलिए छिप के देख रहे थे। परंतु जैसे ही अघासुर का वध भगवान ने किया, वध नहीं उसको मुक्ति दी, तो अघासुर को जब मुक्ति प्रदान की भगवान ने, तो सारे देवतागण वो पुष्प अभिषेक किए भगवान का, जो कि आज हम लोग करने वाले। तो हम लोग तो जो भी बाजार में पुष्प मिले, कलयुग के हैं ये सारे पुष्प, बहुत कम इनमें सुगंध होती है, तो इन पुष्पों को इकट्ठा किए हैं, लेकिन ये देवतागण जो पुष्प अभिषेक भगवान कृष्ण का किए, अघनशूधन भगवान, तो वो स्वर्गीय पुष्प थे वो, और ऐसे ऐसे पुष्प जिनकी गंध ऐसी थी, और वो ऊपर से बरसा रहे थे, कहां से, स्वर्ग लोक से। यहां पर तो हम खाली ऑल्टर के पीछे जाकर वहीं से बरसाने वाले हैं, लेकिन वो ऊपर से स्वर्ग लोक से वो बरसा रहे थे, और उनकी सुगंध वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। ये कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वो जैसे पुष्प ऊपर से भगवान के ऊपर उनकी वर्षा हो रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, केवल अभिषेक नहीं पुष्प वर्षा, ये वर्णन दिया गया। तो भगवान को ये पुष्प बहुत अच्छा लगता है, इसलिए देखिए भगवद गीता में भगवान ने जो श्लोक कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। ये श्लोक भगवान को इतना प्रिय है कि ये श्लोक भगवान ने एज इट इज सुदामा को भी सुनाया था, और श्रीमद् भागवत में ये वाला श्लोक एज इट इज मेंशन है। सुखदेव गोस्वामी कहें भगवान ने फिर ये रिपीट किया, तो सोचिए भगवान जिस श्लोक को फिर रिपीट किए हैं, मतलब बहुत प्रिय है भगवान को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में, इस श्लोक की टीका में वो कहते हैं कि जब भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल, चार चीजें बताई हैं यहां पर, कोई एक पत्ता, कोई एक पुष्प, कोई एक फल और थोड़ा जल, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान यहां पर इस श्लोक को कहते हुए, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने दो दफा भक्ति का उल्लेख किया है, भक्ति से जो अर्पित करता है, भक्ति से जो एक पत्ता अर्पित करता है, भक्ति से जो एक फल अर्पित करता है, भक्ति से जो एक पुष्प अर्पित करता है, भक्ति से जो कोई जल अर्पित करता है, भगवान कहते हैं अशनामी। अशनामी का अर्थ है मैं खा लेता हूं। तो चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान इस श्लोक को कहते हुए, अर्जुन को इस श्लोक को सुना रहे हैं भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, और सुनाते हुए भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान ये भी नहीं जान पा रहे कि ये चारों आइटम में सब खाने लायक आइटम नहीं है। हाँ ठीक है, पत्ता, पत्ता गोभी खा सकते हैं, उसको भी पत्ता बोलते हैं, पालक का पत्ता होता है, लेकिन कलयुग में एक दूसरा पत्ता लोग बहुत खाते हैं, है ना, जानते हैं आप कौन सा पत्ता है, थोड़ा उसको त्रिकोण में घुमाकर, पहले कुछ हमारे रिश्तेदार जाते थे ये पान पट्टी की दुकान पर, तो मैं हर समय वो जब देखता था, वो जब खाते थे, मुझे केवल उसके अंदर का वो गुलकंद अच्छा लगता था, तो मुझे जब भी वो देते थे तो पूरा उसको चीर फाड़ कर कर अंदर का गुलकंद लेता था, बाकी फेंक देता था। तो मेरे एक जो ताऊ जी थे, उन्होंने पूछा, ये अरे ये इतना महंगा पान तुम फेंक रहे हो? तो मैंने कहा, वो पान बांधने से पहले उसने किया क्या देखिए, चूना लगाया, चूना। तो हम सब जानते हैं उसके दो मतलब होते हैं। तो जब चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पत्ता, हाँ ठीक है, पत्ता खाते हैं वो भगवान, और फल, फल भी समझ सकते हैं हम कि फल भी खाते हैं, जल यदि आप बंगाल में जाओ तो वहां खाते हैं उसको, जल खाबे, है ना, वहां पर बोलते हैं जल खाबे, ठीक है, वो भी अंदर लिया जाता है। लेकिन ये पुष्प, अब पुष्प जो है वो तो सूंघा जाता है ना, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान इतना भाव विभोर हो गए, भगवान कह रहे हैं कि वो पुष्प को भी अशनामी बोल रहे हैं, खा रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अशनामी पुष्प भी, जैसे हम लोग हाल ही में साउथ इंडिया की यात्रा के लिए गए थे, उडुपी और गुरुवायूर, तो वहां पर वो लोग सब जो भी प्रसाद सर्व करते हैं वो केले के पत्ते पर करते हैं। तो इस बार हमारे सारे जो विद्यार्थी गण गए थे, कुछ 70-80, तो वो केले के पत्ते के ऊपर उनको सर्व किया गया था। जहां पर भी जाओ केले के पत्ते रहते, चाहे कोई अगर उधर होटल में भी जाता है तो वहां पे नीचे स्टील की प्लेट होगी लेकिन उसके अंदर केले का पत्ता होगा, केले के पत्ते में ही खाना है। यहां तक कि मैं 2 साल पहले यूरोप के एक कंट्री में गया था, स्लोवेनिया, वहां पर एक साउथ इंडियन फैमिली ने प्रसाद के लिए बुलाया था, तो देखा केले का पत्ता। मैंने कहा स्लोवेनिया में केले के पत्ते कहां मिले आपको? तो उन्होंने कहा इन्हें आर्टिफिशियल है, वॉशेबल और रीयूजेबल, लेकिन क्योंकि वो साउथ इंडिया के तो इसलिए वो उस याद में हर समय वहां कोई केले, केला नहीं, केले के पत्ते नहीं, कुछ नहीं मिलता है उस देश में। जैसे एक ब्रिटिशर, वो पहली दफा जब साउथ इंडिया गए तो उनको ऐसे ही उडुपी के एक मठ में ये सब साउथ इंडियन केले के पत्ते पर दिया खाने के लिए। तब उन्हें पता नहीं, उन्होंने इडली खाई, सांबर, चटनी, वड़ा, जो भी पायसम, जो भी कुछ दिया सब खाया, पत्ता भी खा लिया। एक हम वहां के सन्यासी मध्व संप्रदाय के, तो वो लेक्चर दे रहे थे, हमने एक उनका लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था सब बच्चों के लिए, तो बोल रहे थे कि वो हाल ही में यूएस गए प्रीचिंग करने के लिए, मध्व संप्रदाय के वहां के 12 साल के थे जब उनको सन्यास मिला था, अभी वो कुछ 50+55 ऐसे उनका एज है। तो वो बोल रहे थे कि जब वो यूएस में लोगों से मिले तो जब उनका इंट्रोडक्शन दिया गया कि ये सन्यासी उडुपी से आए हैं, तो एक शख्स वहां पर वो उनको आके कहे कि उडुपी कोई जगह का नाम है? उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, वो एक तीर्थ स्थान है। तो इन्होंने पूछा तो आपको क्या लगा उडुपी क्या है? तो इन्होंने कहा मुझे लगा उडुपी तो खाली खाने पीने की चीजों का नाम है। तो ये सन्यासी ने पूछा क्या मतलब है आपका? मुझे तो, वो शख्स बोल रहे थे वहां अमेरिका, मुझे लगा कि उडुपी एक शॉर्ट फॉर्म है साउथ इंडियन फूड का, यू फॉर उत्तप्पा, डी फॉर डोसा, यू फॉर उपमा, पी फॉर पायसम, आई फॉर इडली। वो सीरियसली बोल रहे हैं, मुझे लगा कि ये उडुपी एक इसका फुल फॉर्म ये है। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है वहां पर। यदि हमारा सौभाग्य हो तो एक दिन यात्रा के लिए जाएंगे वहां पर उडुपी और गुरुवायूर। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान यहां पर अश्नामी जो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ खा लेता हूं, ये भगवान भाव विभोर अवस्था में बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति वहां पर प्रमुख है। एक हमारे पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयम् तु सर्वदा तस्मै भावग्राही जनार्दन। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है मूर्खो वदति विष्णाय, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो ठीक से संस्कृत व्याकरण नहीं बोल पा रहा होगा, तो वो विष्णवे को विष्णाय बोलता होगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार विष्णु जो कि प्रथमा विभक्ति में है उसकी चतुर्थी वो विष्णवे होते, तो हो सकता है कि वो विष्णु को विष्णवे के बदले विष्णाय बोले, जैसे कृष्ण का कृष्णाय बनता है लेकिन विष्णु का विष्णवे होता है संस्कृत में। तो मूर्खो वदति विश्नाय, कोई मूर्ख व्यक्ति विश्नाय बोलेगा और कोई धीर व्यक्ति वो विष्णवे बोलेगा। धीर मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। परंतु उभयम तु समम पुण्यम, भगवान श्री जनार्दन के लिए वो कोई मायना नहीं रखता कि कौन सही व्याकरण बोल रहा है कौन गलत व्याकरण बोल रहा है, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, भगवान उसके अंदर भावना देख रहे हैं कि वो किस भावना से अर्पित कर रहा है, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर हां हम पुष्पों का अभिषेक भगवान को कर रहे हैं, क्या कुछ हम नहीं अर्पित करते, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है हमारी भावना। तो आज हम तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो कैसे भगवान वो पदार्थ से ज्यादा उस व्यक्ति की भावना पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति कुछ भगवान को अर्पित करता है तो भगवान भावना के इतने भूखे हैं कि यदि उस भक्त के पास कोई साधन भी क्यों ना हो, हो या ना हो, मान लीजिए कुछ नहीं उसके पास, मतलब जैसे कि यहां पर की कथा है नासिक के गोदावरी ब्राह्मण की, कि ये गोदावरी ब्राह्मण गोदावरी के तट पर अपने मन में भगवान जो वैकुंठ पति हैं उनको खीर खिलाने की इनकी इच्छा हुई, लेकिन ये साधु महात्मा केवल गोदावरी के तट पर रहते, इनके पास कोई सामग्री नहीं, कोई किचन नहीं, कोई दूध नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। तो ये पहला कैटेगरी है जिसके अंदर कोई सामग्री नहीं है लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं उसके भाव को देखकर। तो ये गोदावरी के तट पर ये ब्राह्मण, ये अपने मन में भगवान वैकुंठपति को वो खीर कैसे अर्पित की इन्होंने, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि वो अपने मन में सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का दूध वो उबालना रखते हैं, सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का चावल वो उस दूध के साथ उबालना शुरू करते हैं, जैसे खीर कैसे बनती है। और खीर में जितने सबसे हाई क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और बाकी सारी चीजें, केसर, कैम्फर, पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम, किचन डिपार्टमेंट यदि सुनेगा, हमारे किचन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगेगा कि काश हम भी मन में ऐसी कुकिंग करें और भगवान के साथ भगवान के भक्त भी उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे भगवान वो भावना को स्वीकार करते हैं, तो कितना टाइम बचेगा, कितना खर्चा बचेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कितने खुश हो जाएंगे। और उसमें मतलब मन में आप किसी को खिला रहे हो तो उसका तो कोई लिमिट नहीं ना, कितने भी काजू डाल सकते हो, कितने भी किशमिश डाल सकते हो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स नासिक में उपलब्ध भी नहीं वो भी डाल सकते हो, क्योंकि हम इतने एडवांस्ड नहीं है भगवान की तरह, इसलिए हमको वो फिजिकली ग्रहण करना पड़ता है। तो ये ब्राह्मण ये अपने मन में ये ऐसा हाई क्वालिटी स्वीट राइस अपने ध्यान में वो भगवान के लिए पका रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ऑफर करने से पहले रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनके मन में आया कि भाई खीर जो है वो ठंडी ज्यादा अच्छी लगती, गर्मा गर्म खीर नहीं इतनी स्वादिष्ट लगती, जब वो ठंडी हो जाए और वो भी चंद्र किरण के अंदर। तो अपने मन में उन्होंने अब उसको ठंडा करना शुरू किया, अभी तो पका लिया अब ठंडा करना शुरू किया। तब कुछ समय बाद फिर चेक कर रहे हैं कि वो खीर ठंडी हुई कि नहीं, तो अपने मन में उस खीर के पतीले में उन्होंने अपनी उंगली डाली चेक करने के लिए, लेकिन वो खीर अब भी इतनी गर्म थी कि उनकी उंगली को चटका लगा। और जैसे ही उनको चटका लगा, ध्यान में रखिएगा कि ये सब ध्यान में चल रहा है, क्योंकि स्वीट राइस का नाम सुनते ही कई तो हम फिर आगे के सब भूल जाते हैं, हमको तुरंत फिर अपना ख्याल आने लगता है कि मैंने कौन कौन सी स्वीट राइस खाई थी, आज है कि नहीं, नहीं है आज नहीं है, गुलाब जामुन है आज। तो जैसे उनका ध्यान भंग हुआ, क्योंकि ध्यान में उनको चटका लगा, तो ध्यान भंग होते ही उन्होंने अपनी उंगली को जब देखा, तो जो उंगली उन्होंने अपनी ध्यान में डाली थी उस गरम खीर में, वो उंगली थोड़ी सी जल गई असलियत में। और अचानक वैकुंठ में वैकुंठ पति भगवान श्री नारायण वो हंसने लगे, तो अब लक्ष्मी देवी वो भगवान के चरण दबा रही वहां पर, नित्य सेवा जो उनकी है, तो भगवान लेटे हुए लेकिन अचानक हंसने लगे, तो लक्ष्मी देवी ने देखा और फिर पूछा कि आप हंसे क्यों अचानक। तो जब भी पत्नी पूछती है पति से क्यों हंसे, तो पति को बताना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो फिर वो हंस बंद हो जाएगा, इसलिए उनको बोलते हैं ना हस्बैंड। तो भगवान ने भी फिर बिल्कुल भी देरी नहीं की, तुरंत बता दिया क्यों वो हंसे। और जब भगवान ने बताया कि ये यहां नासिक धाम में गोदावरी के तट पर ये ब्राह्मण अपने मन में इतने सुंदर तरीके से और ऐसे उत्कृष्ट खीर मुझे ऑफर किया है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, भगवान इस ब्राह्मण के उस भाव को देखते हुए भगवान ने अपने विष्णु दूत को तुरंत भेजा, कहा यहां नासिक में गोदावरी के तट पर उस ब्राह्मण को वैकुंठ में ले आने के लिए। तो क्या सौभाग्य इस ब्राह्मण का कि जिसने भगवान को अपने मन में, लेकिन भगवान ने क्या देखा वहां पर, भावग्राही जनार्दन, कि इसके पास कुछ भी नहीं था, कोई सामग्री नहीं, लेकिन इन जिस भाव से अर्पित किया भगवान ने, उसे भी स्वीकार किया और उस व्यक्ति को भी स्वीकार किया, दोनों को। तो इसलिए जब पुजारी भगवान को कुछ अर्पित करता है, या हम में से जो भी कुछ यहां कोई बैठा हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जहां कहीं पर भी हम बैठे हों, चाहे बाहर बैठे हों, चाहे ऊपर बैठे हों, चाहे यहां बैठे हों, भगवान दिख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन यदि हम उस भावना से भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान वहां पर बैठे खड़े खड़े हम सबकी ऑफरिंग स्वीकार कर सकते हैं, और ऑफरिंग के साथ हमें भी, ये उनकी विशेषता है। तो ये पहली कैटेगरी, जहां पर कोई सामग्री नहीं लेकिन भगवान उसकी भावना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी कि जब सामग्री है लेकिन उसको ऑफर करने की सुविधा नहीं है उसके पास। जैसे कि कई लोग होते हैं ना, उनको कुछ खरीदने की बहुत इच्छा होती है, नया साल है, कुछ नई चीजें खरीदें, तो मार्केट में जाते हैं, लेकिन खाली विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं इतने। तो जो कई ब्रांडेड आइटम्स होते हैं उनको देख लेते हैं, वो बाहर वो लोग डिस्प्ले करते हैं ना बड़े बड़े शोरूम्स में, कि उनके ब्रांडेड कपड़े वगैरह, ज्वेलरी सब, त्रिभुवन दास, भीमजी जवेरी मुंबई में। तो कई लोग केवल बाहर से देख लेते हैं, वो नौ लाख का बोल, तो देखने के तो पैसे नहीं लगते ना, देख लेते हैं उसको। लेकिन इस भौतिक संसार में देखने से या केवल इस भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने से संतुष्टि नहीं होती, जब तक कि वो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ना हो। तो अब ये दूसरी कैटेगरी, श्रेणी ऐसी है कि जब कोई भक्त के पास कोई सामग्री है, लेकिन वो किसी कारणवश उस सामग्री को व्यक्तिगत रूप से भगवान को अर्पित नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उसके पास वो भावना है तो भगवान उस सामग्री को भी स्वीकार करेंगे। तो इसके विषय में हमारे एक बहुत ही प्रगत वैष्णव आचार्य हुए, जिनका नाम था चंडीदास। और ये चंडीदास, ये ऐसे आचार्य, ऐसे ये कवि कि जिनकी कविताएं स्वयं चैतन्य महाप्रभु वो गाया करते थे, विद्यापति और चंडीदास इनकी। तो इनके संदर्भ में ये कथा है कि इनको ये नाम मिला क्योंकि ये माता चंडी के भक्त थे, दुर्गा देवी। और बहुत सुंदर, इनके बहुत पैसे वाले थे ये, बहुत धनवान, ऐश्वर्यशाली। तो इनका जो भवन था, उस भवन में माता चंडी के बड़ा विग्रह था, तो जिनकी ये पूजा किया करते थे रोज बहुत विस्तार से। और जो ये बहुत प्रसिद्ध, आपने ये एक पंक्ति सुनी होगी, धनम देही जन्म देही भार्या देही पुत्रम देही, सुना है ना? ये ओरिजिनल कंपोजिशन चंडीदास का, ये धनम देही जन्म देही भार्या देही, ये सब चंडीदास का ओरिजिनल कंपोजिशन। तो इनका एक भाई था जो कि भगवान कृष्ण का, विष्णु का भक्त था, और इसलिए इन दोनों में जमती नहीं थी, क्योंकि भाई भगवान विष्णु के भक्त और ये चंडीदास माता चंडी के भक्त। तो इनके जो भाई थे वो एकदम निर्धन, चंडीदास के ही भवन के बगल में अब एक झोपड़े में रहते थे। तो रोज चंडीदास जो विस्तार से इलैबरेट पूजा किया करता था चंडीदास के, तो उनके भवन के चारों ओर बागीचे थे फूलों के, और बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी के फूल वहां उगा करते थे। तो अब ये जो इनके भाई, इनके झोपड़े में एक शालिग्राम शिला जो कि साक्षात विष्णु। तो शालिग्राम शिला की उपासना ये क्या करते थे, क्योंकि इतने निर्धन थे तो कुछ था नहीं इनके पास कुछ अर्पित करने के लिए। तो एक दिन इन्होंने देखा कि इनके भाई के बंगले के बागीचे में एक बहुत सुंदर पुष्प उगा है, लेकिन इनको अनुमति नहीं थी उस बागीचे में जाने की, छोड़ दीजिए कि वहां से कुछ पुष्प लेने की, लेकिन इनके मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं ये पुष्प मेरे शालिग्राम को अर्पित करूं आज। लेकिन अब ये सेकंड कैटेगरी की सामग्री है ऑफरिंग की, फूल है पुष्प है लेकिन कर नहीं पा रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने मन में ध्यान लगाया और उस सुंदर पुष्प खिला हुआ जो पुष्प था उसे शालिग्राम को अर्पित किया, भगवान विष्णु को अर्पित किया। तो जैसे ही अब इनकी ऑफरिंग हो गई उस फूल की, चंडीदास आए बागीचे से फूल लेने के लिए माता चंडी को ऑफरिंग करने के लिए। तो वो आए और उन्होंने वही फूल तोड़ा क्योंकि उस दिन का सबसे खिला हुआ फूल वही था। तो जो फूल को इनके भाई ने मन में शालिग्राम को ऑफर किया था अब उसे तोड़ा और उसे जाकर वो उनके जो विग्रह थे चंडी देवी उनके चरणों में रख दिया। जैसे ही वो फूल अर्पित किया माता चंडी प्रकट हुई वहां चंडीदास के सामने। अब चंडीदास थोड़े घबराए हुए लेकिन इतने प्रसन्न भी कि मेरी आज की ऑफरिंग से माता चंडी इतनी प्रसन्न हुई कि वो साक्षात दर्शन दे रही है मुझे। तो उन्होंने जो भी प्रार्थनाएं कही लेकिन उसके पश्चात पूछा कि आज क्या ऐसा विशेष मैंने किया कि आप प्रकट हुए। तो माता चंडी ने कहा कि आज पहली दफा तुमने मुझे जो ऑफरिंग दिया है वो मुझे प्रिय लगा है। क्या मैंने ऑफरिंग किया आपको, ये फूल। लेकिन ये इस प्रकार के फूल तो मैं रोज ऑफर करता हूं आपको, आज ही क्या स्पेशल था। तो माता चंडी ने कहा कि ये फूल मेरे जो स्वामी आराध्य हैं भगवान विष्णु उनका महाप्रसाद है ये। तो चंडीदास को कुछ समझ में नहीं आया, उनका महाप्रसाद कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी तोड़कर लाया हूं बागीचे से। तो पूरी स्टोरी सुनाई कि तुम्हारा जो भाई बगल के झोपड़े में रह रहा है आज सुबह इतनी भावना से इतनी भक्ति से उसने मन में, क्योंकि तुम अनुमति नहीं देते उसे वहां पर आने की, तो उसने अपने मन में ये पुष्प को उसके शालिग्राम को अर्पित किया और फिर तुम आए, तुमने ये जो तोड़कर मुझे अर्पित किया है तो ये उनका महाप्रसाद बन चुका है। तो जब चंडीदास ने सुना तो उन्होंने फिर माता चंडी से पूछा कि यदि मेरा भाई आपके आराध्य देव की पूजा कर आपको इतना प्रसन्न कर रहा है कि आपने साक्षात दर्शन उसके वजह से मुझे दिया, तो मैं क्यों ना मेरे भाई के पदचिन्हों पर चलते हुए मैं भी आपके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ करूं। तो माता चंडी ने कहा आज पहली दफा तूने पते की बात कही, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और उस दिन से फिर वो भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत अनन्य और प्रगत भक्त हुए जिनकी कविताएं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु वो गाया करते थे। तो ये दूसरी श्रेणी जहां पर ऑफरिंग की सामग्री थी लेकिन सुविधा नहीं थी उसको व्यक्तिगत रूप से ऑफरिंग करने की। और तीसरी श्रेणी कि जब ऑफरिंग है और उसके साथ साथ वो सुविधा है और फिर भाव भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो भक्ति। तो मैं कुछ 2 वर्ष पहले पंजाब गया था, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर, तो वहां पर हम जलंधर गए थे वहां से, और जलंधर के पास एक गांव की कथा मुझे वहां पर कुछ भक्तों ने सुनाई। बहुत ही सुंदर कथा है ये कथा, बहुत वर्षों पहले की उस गांव की। एक व्यक्ति जो कि अनपढ़ गंवार, उस पंजाब के उस गांव का ये अनपढ़ गंवार जट, जट जानते जट, तो ये अनपढ़ गंवार जट उस गांव का, इसका नाम था धन्ना जट। तो किसान था ये, और उस गांव के बाकी भी जितने सारे किसान खेती किया करते थे। तो एक वर्ष वहां पर अकाल पड़ा, और ऐसा अकाल कि एक बूंद पानी वहां पर नहीं बरसा। तो अब सारे वहां पर परेशान किसान, तो किसी ने कहा वहां पर उनकी जो पंचायत बैठी कि क्या करें, यह अकाल पड़ा हुआ है, पूरी सारी हमारी जो खेती है वो नष्ट हो रही है। तो वहां पंचायत में किसी ने कहा कि हमारे गांव का जो पर्वत है, उस पर्वत पर एक पंडित जी बैठते हैं, हर हफ्ते आकर वो अपनी आराधना वहां पर करते हैं, और सुना है कि उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं, तो क्यों ना हम उनको जाकर उनसे याचना करें। तो अब ये जब चर्चा चल रही थी पंचायत में, तो धन्ना जट उन्होंने सुन लिया। तो धन्ना जट अब पूरे अनपढ़ गंवार, कुछ पता नहीं इनको कि आध्यात्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये पंडित जी वगैरह कौन होते हैं, ये निकल पड़े उस पहाड़ी के ऊपर अकेले। अकेले निकल पड़े और उस पंडित जी से मिले और कहा कि भाई ऐसा ऐसा है कि अकाल पड़ा हुआ है, और सुना है कि आपके अंदर कुछ शक्तियां हैं, तो कुछ कीजिए आप। अब बहुत बड़े ये जट, पंडित जी छोटे से। तो पंडित जी थोड़ा डर गए, अभी मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो ये एक तो जाट बुद्धि है इसकी, पता नहीं क्या कर दे, अकेला हूं मैं यहां पर्वत में, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो ये जो पंडित जी, ये शालिग्राम की पूजा किया करते थे। तो कैसे, तो अब इसे छुटकारा पाने के लिए, इस धन्ना जट से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हें शालिग्राम देता हूं। तो धन्ना जट, शालिग्राम क्या होता है, तो बताया कि साक्षात विष्णु का अवतार है एक सुंदर गोल काले पत्थर के रूप में। तो हाँ दो दो जल्दी दो, क्या करना क्या है। बोला हाँ पहले मैं ला के देता हूं फिर बताता हूं। तब इनके पास कोई शालिग्राम इनके खुद का था खाली, लेकिन अब बोल दिया तो वो वहां पर जो नदी बह रही थी, नदी में से कोई एक पत्थर उठा लिया, गोल गोल काला काला सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया, और जाके ये है शालिग्राम, ये लो और इसकी पूजा करो। तो पूजा कैसे पूजा करनी है, तो ये श्लोक कहा पंडित जी ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि इनको ये चीजें आप अर्पित करो, पत्र पुष्प फल और तोय, थोड़ा सा जल। तो ये धन्ना जट पूछते हैं अर्पित करो मतलब कैसे करो अर्पित। बोले इनको खाने के लिए दो, ये खाते हैं ये सब, अष्टामी श्लोक में कहा गया अष्टामी खाते हैं। अच्छा खाने के लिए सारी चीज, तो भोग कैसे चढ़ाते हैं सब कुछ नहीं पता था, लेकिन ये समझ में आ गया कि खाने के लिए देना इनको ये। तो सब पूछ लिया कितने बजे देना होता है, कितने टाइम देना होता है। बोले दिन में दो बार दे देना, हो गया अब जाओ। तो उस पत्थर को लेकर आ गए धन्ना जट। अब जो उनका सा झोपड़ा सा था खेत के बीच में, वहां रख दिया, उनके पलंग पे ही रख दिया उनको। और अब जो थोड़ी सी खेती थी उसमें से अभी देखे कि पत्ता कहाँ मिलेगा, तो क्योंकि जो भी खेत में उपलब्ध था वही लेकर आए, तो पत्ता गोभी ले आए, पत्ता वो रख दिया। फिर फल लेकर आ गए, एक सेब लेकर आ गए वो रख दिया। फूल क्या अर्पित करें अब, तो फूल गोभी अर्पित कर दी, फूल जैसा है तो थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया। तो अब ये सब रख दिया पलंग पर, वो जो भी शालिग्राम मिला था उनको रख दिया और सामने ये सब रख दिए। अब वो पूछना भूल गए कि ये अब कैसे खाते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर क्या है ऑफरिंग का, वो पूछना वगैरह भूल गए। तो वो फिर अपनी भाषा में वो भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं अभी, तो अपनी भाषा में वो भगवान को कहते हैं भोग ले ले ठाकरा। वो बैठे रहे, अब कुछ हुआ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट कुछ हुआ नहीं, ये खा क्यों नहीं रहे। तो फिर से कहा, 5-10 मिनट बाद फिर से कहा भोग ले ले ठाकरा। फिर 5-10 मिनट रुके, कुछ नहीं हुआ। अब जाट बुद्धि, तो गुस्सा आया इनको थोड़ा, तो फिर उन्होंने कहा भोग ले ले ठाकरा, गुस्सा बड़ा बेड़ा धन्ना जटदा। फिर 5-10 मिनट रुके, कुछ नहीं हुआ, और गुस्सा आया। फिर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर बोला भोग ले ले ठाकरा, गुस्सा बड़ा बेड़ा धन्ना जटदा। तो भगवान वहां प्रकट हुए, और ये लोक कथा है वहां की, कि भगवान वहां पर प्रकट होकर थर थर कांपते हुए वो पत्ता गोभी खा रहे हैं, फूल गोभी खा रहे हैं, वो जो भी कच्चा सलाद रखा हुआ था वो सब, और ये आंख बंद कर बोले जा रहे हैं भोग ले ले ठाकरा, गुस्सा बड़ा बेड़ा धन्ना जटदा। भगवान खाए जा रहे हैं, खाए। फिर इनकी आंख खुली, और चाहिए नहीं। तो जब भगवान पूरा खत्म कर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं, तब फिर धन्ना जट वो भगवान से कहते हैं, अभी देखिए यहां पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी वानी कुछ नहीं है, सारे कुएं यहां पे सूख चुके हैं, वो जो ऊपर वो पंडित जी बैठे हैं उन्होंने भेजा है आपको इस रूप में, कुछ कीजिए अभी। तो पहले से भगवान ने वो जो उनकी ऑफरिंग मंत्र सुना था, डेडली ऑफरिंग मंत्र था वो बहुत, तो भगवान ने सोचा कि ये दूसरा मंत्र शुरू कर दे और इसको गुस्सा आ जाए तो ठीक है। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारा जो खेत का कुआं है उसमें पानी भरा हुआ है, किसने कहा पानी नहीं है, पानी भरा हुआ है, अरे पिछले 6 महीने से खाली है वो कुआं। तो भगवान लेकर आए, देखो पूरा भरा हुआ कुआं, पानी से शुद्ध जल से भरा हुआ। तो धन्ना जट वो एकदम बल्ले बल्ले कर करना भांगड़ा करने लगा, उधर नाचने लगा, ओए ठाकरा ऐसे भगवान का गुणगान करने लगा। तो भर भर के अपने खेत में पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, और फिर भगवान से कहता है इतना खाया मदद करो तुम भी। तो भगवान भी बाल्टी भर भर के वो धन्ना जट के खेत में पानी डाल रहे हैं, दोनों मिलके पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। और दूसरे दिन जब सारे किसान वो उठे देखे तो सबों के खेत वो पूरे पानी से भरे हुए, वो पानी सब सबके कुएं पानी से भरे हुए, खेत पानी से भरे हुए। तो सबने पता लगाया कि हुआ कैसे। फिर धन्ना जट वो बोले कि अरे सब पूरी कहानी बताई कि मैं ऊपर गया था, पंडित जी ने मुझे शालिग्राम दिया और फिर मैंने इनको भोग चढ़ाया, फिर वो आए खाए और उसके बाद में फिर हम दोनों ने सारे खेतों में पानी डाला। तो वो कहाँ है, वो चले गए, कल आएंगे फिर खाने के लिए। तो सभी के मन में थोड़ा संशय हुआ, लेकिन देखा कि पानी कैसे आया तो हो सकता है कि कुछ सच्चाई हो इसकी बात में। देखा शालिग्राम भी है, पंडित जी से भी पूछा, पंडित जी को बताया, पंडित जी अचरज में, क्योंकि पंडित जी ने तो एक नदी का पत्थर दिया था। तो पंडित जी भी अभी कैसे कहे कि नहीं वो मैंने पत्थर ही दिया था, क्योंकि सब इस पे टूट पड़ते। तो पंडित जी ने कहा तो भगवान की कृपा है। तो अब दूसरे दिन भी ये लेकर आ गए पत्ता गोभी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के लिस्ट के अनुसार फूल गोभी पत्ता गोभी ऑफरिंग करने के लिए। भोग ले ले, भोग ले ले ठाकरा, आगे की लाइन बोलने से पहले ठाकरा आ गए। और फिर भगवान खाने लगे और सभी वहां गांव के छिपके जो देख रहे थे वो अचरज में पड़ गए, साक्षात भगवान हमारे ये धन्ना जट की झोपड़ी में आके खा रहे हैं। और ऐसे ही ये कच्चा सब कुछ। तो अब धन्ना जट तो एकदम सेलिब्रिटी बन गया, बहुत बड़ा। अब ये खबर पंडित जी तक पहुंच गई, पंडित जी कुछ भी नहीं इसके सामने। तो अब पंडित जी को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, ये कैसे हो सकता है, मेरी ख्याति कम हो रही है, ऐसे कैसे। तो फिर पंडित जी ने कह दिया कि वो झूठा पत्थर है, ये सब झूठ बोल रहा है, वो कोई शालिग्राम नहीं। लेकिन पंडित जी के मन में अब डाउट हुआ कि कहीं मैंने अपना शालिग्राम तो नहीं दे दिया गलती से। तो पंडित जी ने फिर एक शर्त रख दी कि जो गांव का कुआं है बड़ा, उस कुएं में हम दोनों अपने अपने शालिग्राम डालेंगे और जिसका शालिग्राम तैरा वो असली शालिग्राम है, वो असली भगवान है। तो अब पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सब लोग तैयारी में, धन्ना जट के साथ पूरा गांव। तो धन्ना जट ने अपने शालिग्राम को बहुत बड़े एक प्रोसेशन में वो गांव के कुएं के पास ले जाकर हरि नाम करते हुए, और धन्ना जट अब सामने भांगड़ा करते हुए, और यहां पर ये पंडित जी ये अपने शालिग्राम को लेकर गांव के कुएं की ओर आ रहे हैं। तो ये पंडित जी ने किया क्या कि अपने किसी चेले को भेजा और कहा कि ये ले, एक दूसरे नदी का पत्थर दिया, बोला ये पत्थर वो जो उसकी पालकी लगाई ना तो कैसे तो हाथ अंदर डालना, वो ले लेना वो शालिग्राम, और ये नदी का पत्थर रख देना वहां। तो वो भी जो ये पंडित जी का चेला वो भीड़ में घुसकर उसने वो जो सजी हुई पालकी थी उसमें हाथ डाला, ये नदी का पत्थर रखा, और वो जो धन्ना जट जिनको भोग चढ़ाए थे इतने दिनों से वो लेकर पंडित जी को दे दिया। गांव के कुएं के पास पहुंचे अब, तब सभी एकदम उत्सुक कि अब दोनों अपने अपने शालिग्राम डालेंगे, किसका शालिग्राम तैरेगा। आगे सुनाए कथा। तो दोनों ने अपने अपने शालिग्राम डाले और हुआ क्या कि दोनों के शालिग्राम डूब गए। तो अब सब एक दूसरे के पास देख रहे हैं, ये क्या हुआ कि दोनों के शालिग्राम डूब गए, तो कौन सच्चा कौन झूठा। तो धन्ना जट ने जब ये देखा तो धन्ना जट को कोई नहीं पड़ी थी कि मुझे इसके ऊपर जीतना है। धन्ना जट का अब इतना प्रेम हो गया था अपने शालिग्राम से कि धन्ना जट को लगा कि मेरे शालिग्राम डूब रहे हैं। तो धन्ना जट कूद गया कुएं में अपने शालिग्राम को बचाने के लिए, अपने ठाकुर को बचाने के लिए। तो धन्ना जट उस कुएं में कूदा और फिर सबके सामने धन्ना जट के सर के ऊपर वो पंडित जी का शालिग्राम लेकर वो बाहर आता है। तो अब सभी को लगता है कि धन्ना जट अपना शालिग्राम ले गया, लेकिन पंडित जी कहता नहीं तो मेरा है। लेकिन धीरे धीरे धन्ना जट उसके जो पानी की सतह उससे ऊपर उठता हुआ दिखता है और धन्ना जट के नीचे जो धन्ना जट के शालिग्राम, वो धन्ना जट को ऊपर उठाए कि वो स्वयं तैरना तो दूर की बात है, वो धन्ना जट को तैरा रहे हैं ऊपर। और जब सबने ये देखा तो सभी धन्ना जट के गुणगान करने लगे और उस दिन से उस गांव में शालिग्राम की पूजा होती है। वो बता रहे थे कि उस गांव में जो शालिग्राम की पूजा होती है, उस शालिग्राम की पूजा में अब तक वो लोग वही ऑफरिंग करते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, एक सेब और थोड़ा सा जल। और ऑफरिंग का मंत्र क्या होता है? भोग ले ले, भोग ले ले, भोग ले ले ठाकरा, गुस्सा बड़ा बड़ा धन्ना जटता। तो यहां पर ये एक प्रतीक है कि कैसे भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और किसी भी रूप की ऑफरिंग स्वीकार कर सकते हैं जब भगवान देखते हैं भाव। इसलिए उस श्लोक में क्या कहा गया, भाव ग्राही जनार्दना मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। तो इसलिए आज का ये जो पुष्प अभिषेक, कितने हमारे पूरे नासिक कांग्रीगेशन के भक्त लगे हुए कल से और आज, इतने सारे ऑफरिंग्स बनाए, इतने वो पंखुड़ी निकाले फूलों की, अलग अलग प्रकार के वैरायटी, अभी आप उसके दर्शन करेंगे। और उसके साथ जो भी कुछ ऑफरिंग्स हमारे बड़े किचन में बने हैं, इन सब भक्तों का जो भाव है वो आज के इस कार्यक्रम में गया है। और अवश्य ही जो हमारे ठाकरा हैं, कौन है? श्री श्री मदन गोपाल ठाकरा, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, अवश्य ही इन सभी भक्तों की भावना को उसी प्रकार से स्वीकार करेंगे जैसे आज जो हमने चर्चा की। क्योंकि भगवान जो हैं वो हैं भाव ग्राही जनार्दना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री श्री राधा मदन गोपाल पुष्प अभिषेक महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदी। तो अभी जो मेन इवेंट है वो शुरू होने जाने वाला है, तो आप लोग सब अपना आसन जमाए रखिए, कुछ एकाध अनाउंसमेंट होंगे, उसके पश्चात फिर कीर्तन प्रारंभ होगा और फिर तत्पश्चात पुष्पाभिषेक। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।